I talked this morning about us, who we are.
तो इस आज की सुबह हमने इसके बारे में चर्चा की कि हम लोग कौन
हैं. And in a way, what we're doing here.
और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं.
And what relationship we want with you.
और किस तरीके के हमारे संबंध होने चाहिए एक दूसरे के साथ.
And we discussed a little bit our particular. A particular approach to the question of sangha.
और हमारा एक जो नजरिया है संघ को देखने का विशेष नजरिया उसके बारे में.
I just want to say two more words about that and move on to something else after that.
केवल दो ही शब्द उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा फिर हम अपने किसी दूसरी तरफ मुड़ेंगे.
I think sangha is it's obviously a very important word in Buddhism.
बौद्ध धर्म में संघ इस शब्द का अति विशेष महत्व है.
Because it's one of the three jewels.
क्योंकि यह त्रिरत्नों में से एक रत्न है.
But first of all, I think it's important to be clear what we mean by sanghang saranangacchami.
लेकिन आइए इसके बारे में हम पहले स्पष्ट होते हैं कि संगम शरणंगच्छामि का अर्थ क्या होता है.
When we say to the sangha for refuge I go, we're going for refuge to those of the Buddha's disciples of the past and the present who have realized the meaning of his teaching.
जब हम संगम शरणंगच्छामि कहते हैं तो हम उस संघ को शरण जाते हैं जो प्राचीन काल से अभी तक क्यों ना हो जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को ठीक से गहराई से जाना है.
They're no longer beginners, they're no longer trainees.
तो जो संघ में जो लोग होते हैं वो केवल क्या कहते हैं प्रशिक्षण लेने वाले नहीं होते हैं.
They've seen for themselves directly what the Buddha was saying.
उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से यह देखा है अनुभव किया है क्या बुद्ध कहना चाहते हैं.
So you're going for refuge to them because they are a source of confidence.
और हम उनकी शरण जाते हैं क्योंकि वह हमारे आत्मविश्वास का एक स्तोत्र होता है.
You're not going for refuge to the Bhikshu Sangha.
तो उस तरीके से हम जैसा हम भिक्षु संघ समझते हैं उसी को ही केवल शरण जाते हैं ऐसा नहीं है.
So maybe within the Bhikshu Sangha, Shrotapannas and so forth.
यह भी निश्चित है कि उन भिक्षु संघ में भी श्रोतापन्न और अर्हत हो सकते हैं.
But there are many who are not.
लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो श्रोतापन्न अर्हत नहीं हो सकते.
So you can't go for refuge to them.
तो उनको हम शरण नहीं जाते.
Because you can't rely on them as being fully aware of the Dhamma.
तो हम उनके ऊपर उस तरीके से निर्भर नहीं होते जैसे हम समझते कि जिन्होंने धम्म को पूरी तरह समझा है.
So yes, when we say sangha as a refuge, we mean all those who you can completely rely on their understanding of Dhamma, their penetration of Dhamma.
तो संघ एक शरण के माध्यम से जब हम समझते हैं कि संघ शरणं का अर्थ क्या है तो वह लोग जो पूरी तरह से संघ को भेदित करके संघ को जाना है.
But nonetheless, we do use sangha in a broader sense.
लेकिन एक दूसरा भी अर्थ है संघ को एक सामान्य रूप से या विशाल रूप से समझने के लिए.
Here now, we're a sangha.
अब हम सब लोग जो यहाँ है यह भी एक संघ है.
Not a sangha in the sense of a refuge.
उस तरीके का संघ नहीं जिसकी हम शरण जाते हैं.
But we're trying, we're listening to the Dhamma together.
हम धम्म को इकट्ठा सुन रहे हैं.
We're trying to understand the Dhamma together, practice the Dhamma together.
हम धम्म को साथ साथ सुन के उसका आचरण इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं.
So in that sense, we are a sangha.
तो उस दृष्टिकोण से भी हम क्या है संघ है.
So I wanted to make that clear because I know it's a source of confusion.
तो मैं इसके बारे में स्पष्टता देना चाहता था क्योंकि यह अक्सर संभ्रम पैदा करता
है. So the sangha is refuge, which means all those who have passed a point at which they cannot fall back.
तो पहला अर्थ यही है कि संघ की शरण जाना उस संघ की जो कभी भी धम्म मार्ग से मुड़ते नहीं है जो कभी भी वहां से लौटते नहीं है.
And then we have sangha in a broader sense.
और फिर दूसरा जो संघ एक विशाल रूप से जिसका अर्थ समझते
हैं. And that means all those who are practicing the Dhamma and have the Buddha as their teacher.
वह संघ जो सभी लोग संघ का आचरण करते हैं और बुद्ध को एक गुरु के इससे यानी स्वीकारते हैं.
So what I want to do now is talk a little bit about Baba Sahib's own conversion.
तो अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा बाबा साहब के अपने धर्मांतरण की.
Because I think for most of us in India, Baba Sahib is the link with the Buddha Dhamma.
क्योंकि सभी भारतीयों के लिए और एक बाबा साहब जो है कड़ी है बुद्ध धम्म के पास ले जाने की.
So it's important that we understand clearly why Baba Sahib converted to the Buddha Dhamma.
तो इस बात को हमें स्पष्टता से समझना है कि क्यों बाबा साहब ने बौद्ध धर्म चुना या क्यों वह धर्मांतरित हुए.
We need to understand that clearly for ourselves.
यह सबसे पहले समझना है कि अपने आप के लिए क्यों यह महत्वपूर्ण है.
But we need to be able to understand it so we can communicate it to others.
और हमें यह समझना है गहराई से इसलिए क्योंकि हम औरों को यह संवादित कर पाए बता पाए.
I've talked about this both the previous times I was here.
इसके बारे में मैंने जब दो बार पहले आया इसके बारे में काफी चर्चाएं मैंने की है.
But it's so important, I think I have to speak about it again.
लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण है इसे समझना कि मैं फिर से इसी के बारे में और कुछ कहूंगा.
So, well, first of all, what was Baba Sahib's mission?
तो सबसे पहले देखते हैं बाबा साहब का मिशन क्या था.
That we all know, that's very obvious.
ये हम सबको पता है यह बहुत स्वाभाविक है.
He wanted to end the injustice of caste.
वह जो जाति के आधार पर जो अन्याय है उसको पूरी तरह खत्म करना चाहते थे.
He wanted to get caste out of India.
वह जाति को भारत से उखाड़ फेंकना चाहते थे.
He wanted to create a new kind of society in India.
एक नए तरीके का समाज भारत में वह बनाना चाहते थे.
And he said that society was one in which there was liberty, equality and fraternity.
और ऐसा समाज जिसमें समता, स्वतंत्रता और बंधुता प्रस्थापित रहे.
So liberty means that well, you're free to live the life that's best for you.
लिबर्टी का अर्थ या मुक्तता का अर्थ स्वतंत्रता का यह अर्थ ऐसा है कि ऐसा जीवन हम जीना चाहते हैं जैसा हम जीवन जीना चाहे.
But for instance, you're able to live where you like.
उधर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जैसा आप जीना चाहते हैं वैसा आप जिए.
Well, traditionally in India, people live in the place that's assigned to their community, their caste.
Traditionally,
in India. People live where their caste is supposed to live.
भारत में ज्यादातर जीवन ऐसे गए हैं जिस जाति में उनका जन्म हुआ वहीं पे उनको अपना जीवन बिताना पड़ा.
Of course, that's breaking down a bit in the big cities.
अब यह टूट रहा है मान लीजिए बड़े-बड़े शहरों में हो.
But I imagine in the villages around here, still people live only with their own caste fellows.
लेकिन अभी भी आज हम देखते हैं कि लोग अपने अपने जातियों तक ही सीमित रह के अपना जीवन बिताते हैं.
Traditionally, caste meant that you could only undertake certain kinds of work.
और पारंपरिक दृष्टि से इसका अर्थ यही होता है कि जो जाति के अनुसार आपका व्यवसाय हो जो काम आपको मिलता हो वही हमें करना होता है.
Caste meant you could only marry within a certain range of option.
जाति का अर्थ यह भी है कि जो उस जाति की लड़का लड़की उन्हीं में उनकी शादियां होती है.
So a caste-based society is one which is very much restricts people's freedom.
तो जाति के ऊपर जाति मूलक जो समाज है वह हमेशा ही स्वतंत्रता को रोकता है.
The strange thing is it restricts everybody's freedom.
यह बहुत विचित्र है कि हर किसी के स्वतंत्रता को यह बांधता है या उसको रोकता है.
But it particularly restricts the freedom of those who are the most oppressed in that system.
लेकिन निश्चित रूप से उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह जाती है जो निचले जाति से होते हैं या निचले तबके के होते हैं.
So Baba Sahib wanted a society in which people felt free.
तो बाबा साहब एक ऐसा समाज चाहते थे जहां लोग मुक्तता का अनुभव करें.
Where they could do what they like so long as they didn't harm others.
वो अपना जीवन स्वतंत्रता से जिए जब तक वे एक दूसरे को हिंसा नहीं करते.
Live where they like, work where they like.
वह जैसा जीवन चाहे वैसा जीवन जीना चाहे जो काम करना चाहे वह काम करे और जहां उनको मन हो वहां वो शादी कर पाए.
So yes, it was a very different society from the caste-based society.
तो जो जाति मूलक समाज होता है ये बहुत ही विचित्र समाज होता है.
Then Baba Sahib wanted a society that was equal.
और बाबा साहब ऐसा समाज चाहते थे जहां समानता हो.
So that when you have two people, well, they're just human beings.
जब दो लोग हैं तो वो केवल इंसान है.
In a caste-based society, of course, your position in society is determined by the caste into which you're born.
जाति मूलक समाज में आपका जीवन वही निर्धारित करता है जिस जाति में आपका जन्म हुआ है.
There's a little bit more movement now, but there's still, on the whole, people are held down by their caste birth.
अब थोड़ा बहुत हम परिवर्तन देख पा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उस जाति के जाति से पीड़ित है, उसी तरीके का जीवन बिताते हैं।
And yes, people are whatever their good qualities, they're not always able to express them.
जो कुछ भी उनके अच्छे गुण हैं, उनकी अभिव्यक्ति की वहां स्वतंत्रता नहीं है।
So yes, people are different.
निश्चित रूप से लोग अलग अलग हैं।
Some are cleverer than others, some are more gifted than others.
कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं, कुछ लोग बहुत ही यानी निसर्ग से जिनको कुछ भेंट हो वैसे होते हैं.
But that's got nothing to do with caste.
लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं है जाति से.
You get very stupid people in the so-called high caste and very intelligent people in the so-called low ones.
उच्च वर्णियों में या उचले जात के जो लोग हैं उनमें बहुत बेवकूफ लोग भी पाए जाते हैं, और जो निचले जाति के लोग हैं उसमें बहुत मान या होशियार लोग पाए जाते हैं.
So Baba Sahib wanted a society in which people were treated as equal.
तो बाबा साहब ऐसा समाज चाहते थे जहां सबके साथ समानता का सुलूक हो.
And a society where if they had gifts and intelligence and so forth, well, that would naturally express itself.
तो जिन लोगों को यह प्रतिभाएं हैं, विशेष प्रतिभाएं हैं, या जो बहुत होशियार है, वह अपने आप को पूरी तरह अभिव्यक्त कर पाए.
He wanted people to be treated as equal before the law.
वह चाहते थे कि कानून के आगे, नियमों के आगे सभी को समान रूप से बर्ताव मिले.
You know, even now, I think if somebody goes to a court of law, it can depend on what the caste constitution is. Yeah.
अभी भी आज हम देखते हैं कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई मसला जाता है तो जाति के आधार पर उसका यह होता है, न्याय होता है.
He wanted one human being, one vote.
वो चाहते थे एक इंसान और एक मत.
And of course, well, the constitution has given that.
और संविधान ने हम सबको यह दिया है.
But because people still vote largely on a caste basis, it means that the full democracy is not able to flourish.
तो अभी भी लोग अगर जाति के आधार पर अपना अपना वोट देते, इसका मतलब पूर्ण लोकतंत्र यहाँ निर्माण नहीं हुआ है.
So even in this way, equality is not here, even though we have equality in the constitution.
तो संविधानिक रूप से समानता प्रदान करने के बाद भी समाज में वह समानता प्रस्तापित नहीं हुई.
Then he wanted fraternity.
फिर वो चाहते थे बंधुत्व.
And he defined fraternity as an attitude of respect and reverence of one citizen for another.
वह चाहते थे कि एक नागरिक का दूसरे नागरिक के साथ एक सम्मान का बर्ताव, एक आदर का बर्ताव.
So in other words, you see the other person as a human being.
एक दूसरे शब्द में अगर मैं कहूंगा तो एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ एक इंसान का ही सुलूक, इंसानियत का सुलूक करना.
You see them as a fellow Indian in this context.
इस परिपेक्ष में हम उनको एक भारतीय के रूप में ही देखते हैं.
Not that community, our community.
वो उस समुदाय से है, मैं इस समुदाय से हूँ, ऐसा नहीं.
In a caste-based society, your first loyalty is to your caste members.
तो जाति मूलक समाज में जाति की जो यानी मान्यता है या उसका जो आदर है, वो हम अपने जाति को पहले देते हैं.
So it works against fraternity in society as a whole.
तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बंधुता के विरोध में हम काम करते हैं.
That means there's opposition, there's tension all the way through society.
तो पूरे समाज में इस तरीके से क्या है, तनाव बिखरा हुआ है और तनाव है.
Indian society is boiling under the surface all the time.
तो अगर हम देखा जाए तो भारतीय समाज इस तरीके से हमेशा ही उबल रहा है.
And every now and again it boils over in one place or another.
तो हर आदमी एक दूसरे के ऊपर ऐसा उबल रहा है.
And of course politicians exploit this in various ways.
और जो राजनीतिज्ञ है अपना अपना फायदा उठाते हैं इस परिस्थिति का.
I mean some politicians, not all of course.
कुछ राजनीतिक इसका फायदा उठाते हैं, सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं.
They put the flame under the pot so it boils even more strongly.
वो क्या करते हैं, जो उसकी लौ है वो उस बर्तन के नीचे हमेशा ही सुलगाते रहते हैं ताकि लोग ऐसे उबलते रहे.
Baba Sahib wanted a society in which everybody just saw brother, sister.
तो बाबा साहब एक ऐसा समाज चाहते थे जहाँ हर आदमी अपने आप को एक भाई समझे, दूसरों को अपनी बहन समझे.
It wasn't the first thing people thought, which community did he come from?
तो सबसे पहले लोग यहाँ खोजते हैं कि किस जाति से यह आ रहा है.
You know, before you're willing to greet them or meet with them, you need to work out what their community is.
उनके पहले कि हम उनको नमस्कार चमत्कार करें, लोग वो जानना चाहते हैं इसकी जात क्या है.
Before you eat with them or whatever.
उनके पहले आप उनके साथ खाना खाएंगे या ये करेंगे ये करने से पहले वो जानना चाहते हैं आपकी जात क्या है.
Somebody told me a very very shocking story just a few days ago.
अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक मित्र ने बहुत ही दर्दनाक या आश्चर्यजनक बात बताई.
There was a big flood in Bihar.
बिहार में बाढ़ आई थी.
And this person, this friend of mine, went to that area to try to help feed people.
मेरा मित्र जो है वहाँ बाढ़ की मदद करने के लिए जो बाढ़ग्रस्त लोग हैं वहाँ पे गया.
And they organized a food distribution point and so on.
और वहाँ पे उन्होंने खाना देने के जो अलग-अलग क्या है कि काउंटर है वो जो टेबल लगाए थे.
And as he was going away from there, somebody came up to him, an old man came up to him.
और कुछ तो भी हुआ और वहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति आए.
And this old man said to him, "Please, can you help me to get some food?"
और उस वृद्ध व्यक्ति ने पूछा कि क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकते हैं?
He said, "Well, just go over there; they will give you food."
और उन्होंने उनको कहा कि वहाँ जाइए, वहाँ खाना मिल रहा है, आपको खाना वहाँ मिलेगा.
And this old man said, "No, I can't take food there because if I took food there, I'd have to eat with those other people."
तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं वहाँ जाके खाना नहीं ले सकता. अगर मैं वहाँ जाके खाना लूँगा तो मुझे उनके साथ खाना खाना पड़ेगा.
He hadn't eaten for 7 days, but he couldn't eat with other people.
अब 7 दिनों तक उसने खाना नहीं खाया था लेकिन उन लोगों के साथ वह खाना नहीं खा सकता था.
Because it would affect his caste, his pollution, yeah.
क्योंकि उससे उसका जो जाति धर्म या जाति जो है वह नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी.
This is the state of the caste mind.
तो यह होता है जाति मूलक दिमाग.
Your caste is more important than food even.
तो आपके खाने से भी यहाँ जाति ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई.
So there's not that sense of human solidarity, that sense of brotherhood, sisterhood.
तो इस तरीके से जो मानवता की जो एकता है वो नष्ट कर देती है और बंधुता की भावना वहाँ नहीं होती.
You know about this much better than I do.
आपको इस चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है मेरे तुलना.
You've had to see it with your own eyes and in your own experience.
आपके अपने अनुभव से और आपके अपनी खुली आंखों से आपने इसे देखा है.
We don't have this in England, so I've had to learn it by coming here.
तो ऐसा इंग्लैंड में नहीं होता है. यहाँ जब मैं आता हूँ तो मुझे यह देखना पड़ता है.
But yes, Baba Sahib wanted a society in which there was brotherhood, sisterhood between all citizens.
तो वैसा बाबा साहब चाहते कि सभी नागरिकों में इस तरीके का बंधुभाव यहाँ विकसित हो.
And he thought that bandhutva was the essence of democracy.
और बाबा साहब ने यह कहा है कि बंधुत्व जो है यह लोकतंत्र का सार है.
He said democracy is not just about a system of voting and representation.
बाबा साहब कहते हैं लोकतंत्र केवल प्रतिनिधित्व करने का या वोट देने की ही व्यवस्था नहीं है.
He said democracy is really more like a state of mind.
वह कहते हैं लोकतंत्र एक मानसिकता है.
It's an attitude that one citizen has for another.
वह कहते हैं कि लोकतंत्र वह है जो एक नागरिक का दूसरे नागरिक के प्रति क्या बर्ताव होना चाहिए.
Even he said it's democracy is really maitri.
और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का दूसरा अर्थ मैत्री है.
It's friendliness between citizens.
वो नागरिकों के बीच मित्रता.
So he said that constitutional democracy is not enough.
तो उन्होंने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र ही पर्याप्त नहीं है.
It's very, very important, of course.
यह बहुत महत्वपूर्ण है निश्चित रूप से.
It's created a huge change.
इसने एक यानी एक आमूलाग्र बदल समाज में लाया.
It's given real power to those who've been oppressed.
जो लोग उत्पीड़ित थे उनको इसने बल दिया, शक्ति दी.
But because there isn't this broader social democracy, this attitude of love and respect, the constitutional democracy cannot fully work.
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र के अभाव के कारण संवैधानिक लोकतंत्र ही होना पर्याप्त नहीं हुआ.
I was reading in the discussions in the Constituent Assembly the other day.
मैं एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो उनकी चर्चाएं थी वह मैं पढ़ रहा था संवैधानिक सभा का.
And I saw Baba Sahib saying something that really quite shocked me.
जब वहाँ पे बाबा साहब ने जो कुछ कहा मैंने पढ़ा और इससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ.
He was obviously extremely frustrated. Baba Sahib, yeah.
बाबा साहब बहुत ही यानी निराश थे उस कार्य से.
He said, "I don't want this constitution."
उन्होंने कहा यह संविधान ही मुझे नहीं चाहिए.
I would burn it.
मैं इसको जलाऊंगा.
Because it's as if we've created a wonderful mandir for some god to live in.
Yeah. और उन्होंने कहा यह ऐसा हो रहा है कि मैंने एक सुंदर मंदिर तैयार किया.
And what has come to live in that mandir?
और उस मंदिर में रहने के लिए कौन आया?
Some devil has come and lived here.
वहाँ कोई शैतान आके बस गया है.
In other words, the devil of caste lives in the mandir of the constitution.
तो इस सुंदर संवैधानिक मंदिर में जाति का शैतान आके बस गया है.
So of course he was speaking in a mood of great frustration when so much opposition.
निश्चित रूप से हम यह स्वाभाविक समझ सकते हैं कि इतने सारे निराशाओं में और विरोधाभास में वह काम कर रहे थे, यह स्वाभाविक है.
And there's no doubt that the constitution is a huge achievement for India.
निश्चित रूप से भारत का संविधान एक भारत की अपने आप में महान उपलब्धि है.
It's an example to the whole world of what can be done.
यह पूरे विश्व के आगे ऐसा उदाहरण है कि कितना अच्छा हम कर सकते हैं किसी के लिए.
I was talking to somebody the other day who was concerned with the new constitution in South Africa.
किसी रोज में किसी से चर्चा कर रहा था कि एक नया संविधान लागू करना चाहते हैं साउथ अफ्रीका में.
You remember in South Africa there was white rule.
आपको पता है साउथ अफ्रीका में यानी दक्षिणी अफ्रीका में सफेद लोगों का राज है.
So that the white population, which was about 10%, ruled 90% of the population who were black.
तो केवल 10% सफेद लोग हैं और वो 90% काले लोगों के ऊपर अपना राज्य करते हैं.
So there was a big change 20 years ago.
तो 20 साल पहले वहाँ बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया.
And now it's a constitutional democracy.
अब वहाँ संवैधानिक लोकतंत्र है.
And there are black people president and prime minister and so on.
तो अभी वहाँ पे जो काले जो लोग हैं वह प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं.
But they looked to India as a source of inspiration for their constitution.
लेकिन अपना संविधान निर्माण करने के लिए भारतीय संविधान को ही उन्होंने अपना प्रेरणा स्थान बनाया.
And this person I was talking to said that Dr. Ambedkar was a source of great inspiration to them.
इस तरीके से मैं उनको बता रहा था कि बाबा साहब अपने आप में कितने बड़े प्रेरणा स्रोत रहे.
So it's a wonderful achievement, there's no doubt.
तो यह एक आश्चर्यजनक उपलब्धि है भारत के लिए.
And it's given great advantages to many people.
और कई लोगों को इसने कई फायदे दिए.
But
लेकिन
there's still these divisions, these deep, deep divisions in Indian society.
लेकिन इतने गहरे विभाजन है भारतीय समाज में.
There's still this hierarchical arrangement.
अभी भी यह ऊंच नीचता की जो व्यवस्था है वह बनी हुई है.
I read the other day that something more than 90% of the editors of newspapers in India are from the Brahmin caste.
अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था कि सभी वर्तमान या अखबारों के जो एडिटर हैं 90% ब्राह्मण हैं.
And of course, you know, some there are good Brahmins, there's no doubt.
हो सकता है उसमें से कुछ अच्छे ब्राह्मण हो भी सकते हैं.
But you can tell they're putting out a message.
लेकिन
you can see when you read the papers, they're putting out a particular viewpoint.
लेकिन जब आप अखबारों को पढ़ते हैं तो आप समझ पाते कि कैसा वो अपना एक विशेष वहाँ संदेश देना चाहते हैं.
We even find that in reports on events in India, in England.
तो यह जो फर्क है हम सीधा सीधा देख पाते हैं जो भारत में रिपोर्ट आती है और जो लंदन में रिपोर्ट आती है.
I have not seen a single positive report of what is happening in UP.
मैं एक भी अच्छी यानी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं देता क्या उत्तर प्रदेश में हो रहा है इसके बारे में कोई लिख रहा हो.
All the reports of Mayawati ji are bad.
तो जो भी रिपोर्ट मायावती की आती है वह सब बुरी
है. To me, even the fact that she became chief minister is something wonderful.
मुझे ऐसा लगता है कि उनका अपने आप में एक मुख्यमंत्री बनना ही कितनी बड़ी बात.
That a Dalit woman can become a chief minister is a huge achievement.
एक दलित महिला मुख्यमंत्री बनती है ये कितनी बड़ी उपलब्धि है.
But even that wasn't reported in Britain in that way.
तो उस तरीके का एक सीधी सी जो रिपोर्ट या क्या कहते हैं समाचार है वो भी वो लोग लिखते नहीं है.
क्यों? We know why. We know. They control the information.
क्या कारण है इसका? क्योंकि वो सूचनाओं का नियंत्रण करते हैं.
So there's still, even though we've got a political democracy, a constitutional democracy, there's not a social democracy.
तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमें संवैधानिक लोकतंत्र मिला, राजनीतिक लोकतंत्र मिला, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है.
So Baba Saheb Burr faced this huge problem.
तो यह बहुत गहरी समस्या बाबा साहब, यानी इस गहरी समस्या का सामना बाबा साहब कर रहे हैं.
You can see in 1950 when the Constitution was launched, he had such strong hopes.
जब उन्होंने 1950 में यह भारत का संविधान भारत को दिया तो बड़ी बड़ी आशा के साथ उन्होंने यह सौंपा.
But then, you know, he tried to get the Hindu Code Bill through Parliament.
और तब उन्होंने पूरी कोशिश की कि पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल पास हो जाए.
Just a bill giving ordinary civil rights to women, for instance.
यह क्या बिल था? केवल सामान्य और मूलभूत अधिकार महिलाओं के थे.
Nothing really radical.
कोई ऐसी बहुत बड़ी बात वहाँ नहीं थी.
But they wouldn't accept it.
लेकिन वो भी वह स्वीकार नहीं कर पाए.
नेहरू and his government would not put themselves behind it.
नेहरू और उनकी सरकार ने यह सब मौका जो है उनको नहीं दिया.
So Baba Saheb realized that even though he'd managed to create a constitutional democracy, there were still huge forces against it. Social democracy.
तब बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से देखा कि इतना करने के बाद भी संविधान और लोकतंत्र और संविधान देने के बावजूद भी वह जो चाहते थे वह नहीं हुआ.
So the question was, what to do?
तो तब उनके सामने सवाल खड़ा हुआ कि अब क्या किया जाए.
क्या कर सकता
है? अब हम क्या कर सकते हैं?
What can be done to change this?
क्या कर सकता है इस बदलाव के लिए?
The Buddha won't mind. And Baba Saheb had been thinking about this for many, many years.
Baba Saheb इसके बारे में विचार कर रहे थे कई सालों से.
And very early on, he'd asked serious questions about the nature of caste. From very early on, he'd been asking himself questions about the nature of caste.
तो सब बहुत ही पूर्व दिनों से ही बाबा साहब अपने आप को इस सवाल को पूछ रहे थे कि जाति का स्वभाव क्या है.
His first published work was on the nature of caste.
उनका सबसे पहला जो प्रकाशित लेख था वह जाति के बारे में था.
The castes in India, the origin, genesis and development.
Caste in India, origin, genesis and development. यह उनका पहला आर्टिकल था.
He analyzes very closely the nature of caste.
बहुत ही करीबी से उन्होंने जाति के स्वभाव को देखा और समझा.
And he comes to a very important conclusion, which I think we still need to think about.
लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय पे या निष्कर्ष पे आए जो आज भी हमें सोचने की आवश्यकता है.
He says that essentially caste is marriage.
उन्होंने कहा अंततः हम देखते हैं जाति कुछ नहीं लेकिन एक शादी है.
Anyway, for the time being, I just want to point out he'd been thinking about caste from very early on.
उसके बारे में हम बाद में देखेंगे लेकिन मैं इसके बारे में आगे जानना चाहता हूँ कि जाति क्या है.
Then he wrote that paper, The Annihilation of Caste.
जब उन्होंने जाति उच्छेदन यह आलेख लिखा.
He gave it. He wrote it to give in Ludhiana.
उन्होंने he wrote it in Ludhiana.
No, to give it was going to be a paper that he was reading.
तो वो लुधियाना में अपने पेपर को वो पढ़ रहे थे, पढ़ना चाहते थे.
But the organizers, it was too strong for them.
लेकिन वहाँ के जो संयोजक आयोजक जो थे उन्होंने इसकी अनुमति उनको नहीं दी.
But Annihilation of Caste, I think, is his most important work as regards social issues.
जहाँ तक सामाजिक मुद्दों का सवाल है बाबा साहब का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई आलेख है तो है जाति का उच्छेदन.
So he asks the question very plainly, what is caste?
तो बहुत ही सामान्य रूप से और सीधा सवाल उन्होंने किया कि जाति क्या है.
जाति क्या है? And he comes to the conclusion really that it's nothing.
और बाबा साहब ने यह निष्कर्ष निकाला कि जाति कुछ नहीं है.
It has no real objective existence.
इसका कोई भी वस्तुनिष्ठ अस्तित्व नहीं है.
It's not something to do with DNA.
इसका कोई मतलब नहीं है DNA से.
It's not to do with blood.
इसका खून से कोई संबंध नहीं.
It's something just made up.
यह ऐसी धारणा है जो बनाई गई है.
Under certain very strange circumstances, India developed this very rigid system of social distinction.
बहुत ही विचित्र परिस्थितियों में और अपमानों में यह समाज व्यवस्था बनाई गई है जो ऊंच निष्ठा पैदा करती है.
But it's not a fact.
लेकिन इसका तथ्य स्वरूप या तथ्य कुछ भी नहीं.
You know, I can take this writing pad.
जैसे मैं इस किताब को ऐसे उठा पा रहा हूँ.
I can hit it.
मैं इसको ऐसा ठोक सकता हूँ.
I can weigh it.
इसको मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ इसका.
I can hit myself with it.
मैं इस किताब से अपने आप को मार सकता हूँ.
I can measure it.
मैं इसको गिन सकता हूँ.
You can't do that with cars.
यह सब नहीं होता जाति के साथ.
You know, you say to somebody, "Well, show me caste."
अगर मुझे कोई बताएगा जाति दिखाइए.
Please show me. Look, I'm an Englishman. I don't understand. मुझे मालूम नहीं. क्या जाति है? मुझे मालूम नहीं. मैं गरीब अंग्रेजी है. Please tell me, what is caste? Jati kya hai? Show me Jati. Come on, you're an Indian, show me. You put it in your pocket, yeah? In this pocket? Is it in this pocket? No, I think what I should do with Majuli Nagarjun, I should take him to the surgery.
So, अब ये नागार्जुन मुझे जाति नहीं दिखा पा रहे तो मैं इनको सर्जरी करवाऊंगा.
And I will get a surgeon to cut him open and find caste.
और मैं इनको सब काटूंगा और देखूंगा जाति कहाँ है.
I want to see it.
क्योंकि मैं उसको देखना चाहता हूँ कि जाति का.
Well, we know you wouldn't be able to.
तो आपको पता है आपको ये कहीं नहीं मिलेगा.
You know, after all, if some Brahmin has a road accident out there.
मान लीजिए किसी ब्राह्मण का यहाँ रास्ते पे एक्सीडेंट हो जाता
है. And he needs a blood transfusion.
और उसको मान लीजिए खून की आवश्यकता है.
Majuli Nagarjun's blood will be fine.
मुझे लगता है मेरा खून उसको बचा रहेगा.
If he needs a liver a kidney transplant, he can have it from anybody.
अगर उनको किडनी की आवश्यकता है कोई भी उनको किडनी देके बचा सकता है.
Then maybe he can have a heart transplant. That can be done.
हो सकता है उनको दूसरे दिल की आवश्यकता हो वो भी किया जा सकता है.
Maybe he should have a brain transplant.
हो सकता है दिमाग
फाइन. That's what's needed most.
So, yeah, Baba Sahib asked this plain question. What is it?
तो बाबा साहब ने बिल्कुल यह सीधा सा सवाल पूछा कि जाति क्या है.
He said it's not like a war.
उन्होंने कहा यह किसी दीवार जैसी नहीं है.
You know, you got this caste on that side, that caste on the other side.
मान लीजिए जातियां यहाँ पे रहेगी फिर यहाँ पे एक दीवार रहेगी या जातियां.
There's a wall in between and you can't get through it.
तो ऐसी कोई भी दो जातियों के बीच ऐसी कोई दीवार नहीं है जहाँ के आप पार नहीं कर सकते.
It's not a line of barbed wire, he said.
उन्होंने कहा ऐसा कोई भी डोर ऐसी खींची नहीं गई है.
Like dividing one field from another.
तो एक खेत को दूसरे खेत को जैसा हम विभाजित करते हैं वैसा आप विभाजित कर सकते.
So what is it?
तो यह क्या है?
It's just an idea.
उन्होंने कहा यह एक केवल धारणा है.
Just an idea that people have in their minds.
लोगों की ऐसी धारणा जिन्होंने अपने दिमाग में पाली है.
And that's proved by the fact that Dharmashalan and I, we didn't have that idea.
तो यह सिद्ध हो जाता है. मान लीजिए धर्मशालीन और मैं बाहर से आता हूँ हमारे दिमाग में नहीं है यहाँ वो है.
I didn't really learn about caste until I came to India.
जब तक मैं भारत नहीं आया तब तक मुझे जाति की कोई परिभाषा मालूम ही नहीं
थी. I read about it in history books.
मैंने इतिहास में इसको पढ़ा था.
But when I came to India, I assumed that caste had gone.
जब मैं भारत में आया तो मैंने सोचा जाति अभी यहाँ नहीं है.
Many Western people think that caste is over.
बहुत सारे पश्चिमी जगत के लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी जाति चली गई है.
They think Gandhi ji got rid of caste.
उनको लगा कि गांधी ने जो है जाति निकाल दी.
They don't even realize that Gandhi didn't want to get rid of caste.
उनको यह भी नहीं पता है कि गांधी जी चाहते नहीं थे कि यहाँ से जाति समाप्त हो.
Maybe he wanted to reform it slightly.
हो सकता है उसका थोड़ा सा वो पुनर्निर्माण करना चाहते
हो. He wanted to just adjust it.
हो सकता है कि उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते हो.
Tighten the screws a bit here and there.
या वहाँ से स्क्रू थोड़ा सा ढीला या कसे जो भी करे.
But essentially he believed in caste.
तो
in Varna at least, yeah.
सार्वान्वित रूप से हम यह कह सकते हैं कि उनको वर्ण व्यवस्था के ऊपर उनका विश्वास था.
But most Western people think that he was this wonderful saint who saved India.
तो बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं कि यह बहुत ही महान संत था जिसने भारत को बचाया.
But yes, no other country in the world has a social system like India.
तो पूरे दुनिया में ऐसा कई यानी ऐसी कहीं भी समाज व्यवस्था नहीं है जैसी भारत में है.
Of course there are inequalities.
निश्चित रूप से वहाँ पे भी असमानताएं हैं.
Of course there are divisions.
वहाँ पे विभाजन है.
In England there's still something of a class system.
इंग्लैंड में अभी भी जो है वर्ग व्यवस्था है.
And that has some inequality.
और वहाँ पे कुछ असमानताएं हैं.
But it's very relatively easy to break out of class.
लेकिन ये बहुत आसान हो जाता है वर्ग भेद को नष्ट करना.
In Arabic countries, in Africa, there's still a lot of tribalism.
अरबन देशों में ऐसे कई यानी कह सकते ट्राइबल ग्रुप्स है.
And then there are some places in the world where one nation dominates another, like the British used to do in India.
और अभी भी दुनिया में कुछ देश किस देश के ऊपर हावी है जैसे यहाँ पहले अंग्रेज थे.
So yeah, there are inequalities in other places too.
निश्चित रूप से और जगह में भी असमानताएं है.
But nowhere is there this very very complex, very very rigid system of graded inequality.
कहीं पे भी ऐसी असमानता जो बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से चलती आ रही हो ऐसा नहीं है.
It's only here in India that idea dominates society.
केवल यही एक धारणा है जो पूरे भारत को जिसका इन्हें दबा के रखती है.
The fact that it doesn't exist elsewhere is a cause of hope.
तो अब तथ्य यह है कि अगर दूसरी जगह नहीं है तो यहाँ पे भी यह नहीं हो सकता.
The fact that I don't understand caste properly is a cause of hope for you.
मान लीजिए मैं अब जाति को ठीक से नहीं समझ पाता यह हमारे आपके लिए आशावाद है.
I've spent some time in India now.
मैं बहुत सारा समय भारत में बिता चुका हूँ.
So I begin to recognize caste.
तो मैंने पहचाना है कि यह जाति क्या है.
I don't have any caste feeling.
मेरे में कोई जाति की भावना नहीं है.
I just have a strong sense of solidarity with my Buddhist brothers and sisters.
मेरे जो बौद्ध भाई बहन हैं उनके साथ एक एकता की मेरे मन में बहुत बड़ी भावना है.
But I don't mind what caste people come from. It doesn't bother me.
ये इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति से आते हैं.
So this is a cause of hope for you.
तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा आशावाद हमारे आगे है.
The great majority of human beings exist without the notion of caste.
जो महान पुरुष हुए हैं, जो भी महान व्यक्ति हुए हैं, वह जाति धारणा से परे रहे.
So Baba Saheb say, caste is the ruin of India.
Caste is
the ruin of India.
बाबा साहब कहते हैं कि जाति ही भारत को नष्ट कर रही है.
I don't have to tell you the evil of caste.
मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यह जाति का शैतान कैसे होता है.
Of course, it's an injustice of a monstrous kind.
निश्चित रूप से एक भयानक अन्याय.
And it holds India back.
और इसे भारत को यह पीछे रुकाती है, अटका के रखती है.
In India has such an intelligent and lively and creative population.
भारत के पास इतनी सृजक, जीवित और होशियार ऐसी जनसंख्या है.
But you could say that 80 or 90% of that population cannot express their intelligence and their creativity.
लेकिन ऐसे 80 से 90% लोग जो है जो अपने आप को पूरी तरह अभिव्यक्त और अपनी सृजकता नहीं बता पाते.
30% don't even know they've got it.
30% ऐसे लोग हैं उनको पता भी नहीं है कि हम में यह सब चीजें है.
So India could be so much greater country if it wasn't for caste.
अगर यहाँ जाति नहीं होती तो भारत शायद सबसे महान देश होता.
So Baba Saheb says the problem is caste.
तो बाबा साहब ने कहा कि जो समस्या है वह जाति की है.
Caste doesn't really exist, it's just an idea.
जाति का कोई अस्तित्व नहीं है, यह एक धारणा है.
Where do ideas come from?
अब धारणाएं जो है, कल्पनाएं जो है, वो कहाँ से आती है?
They come from the mind.
यह अपने मन से आती है.
They come from our minds.
यह हमारे मन से आती है.
Even if we're the victims of the system, we've got it in our minds.
जो इस व्यवस्था के victims को क्या कहते हैं? पीड़ित है. उन पीड़ितों को भी यह पता है कि यह मन से आती है.
So Baba Saheb said, well, what mind creates, mind can undo.
तो बाबा साहब क्या कहते हैं? जो मन निर्माण करता है उसको मन मिटा भी सकता है.
The fact that it's an idea is a cause of hope.
तो निश्चित रूप से जो अपनी जो आशा है यह एक बहुत बड़ी कल्पना है.
Because ideas can change.
क्योंकि कल्पनाएं जो है वह बदली जा सकती है.
Minds can change.
और मन जो है वह बदले परिवर्तित किए जा सकते हैं.
So what Baba Saheb said is there needs to be a huge change in the mind of India.
तो बाबा साहब कहते हैं भारत के मन में यह एक गहरा और भव्य परिवर्तन लाने की आवश्यकता है.
इंडिया नीड्स टू गेट अ न्यू माइंड, यू कुड से.
ऐसा हम कह सकते हैं भारत को एक नए मन की आवश्यकता है.
इंडियंस नीड टू गेट अ न्यू माइंड.
भारतीयों को एक नए मन की आवश्यकता है.
दे नीड टू गेट अ कास्टलेस माइंड.
उनको चाहिए जाति विहीन मन.
And then there can be liberty, equality, and fraternity.
और तब यहाँ समता, स्वतंत्रता और बंधुता प्रस्तावित होगी.
So Baba Saheb said, saw that the answer wasn't just in constitutional means.
So Baba Saheb ने इसको भली बात ही जाना कि इसका जो हल है यानी केवल संविधान में नहीं है.
It's not just in political means.
केवल राजनीतिक इसका समाधान नहीं है.
Those are important, of course.
यह बहुत ही महत्वपूर्ण है निश्चित रूप से.
But they will not solve the problem at its root.
लेकिन जड़ से यह पूरे समस्या को उखाड़ नहीं फेंकेंगे.
So what is required is a cultural change and a mental change.
तो बाबा साहब ने बोला कि क्या चाहिए हमें, एक सांस्कृतिक बदल चाहिए, एक मानसिक बदल चाहिए.
And he said that real political change is always preceded by a mental and cultural change, a change in ideas and in culture.
क्या उन्होंने कहा कि राजनीतिक बदलाव के पहले सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव होने चाहिए.
So for instance he said what about the revolution created by the Mauryas, Chandragupta and especially Ashoka.
तो उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने जो बदल लाए वो क्या बदलाव लाए.
He said, what made that possible?
क्यों यह परिवर्तन संभव हुए.
It was the teaching of the Buddha.
यह बुद्ध की शिक्षाओं के कारण संभव हुए.
The Buddha had created the cultural and ideological basis for that revolution.
तो बुद्ध ने ऐसा एक वैचारिक और सांस्कृतिक न्यू या पृष्ठभूमि उसकी तैयार की.
So there needs to be a cultural and ideological, which means a mental shift.
तो इस तरीके से सांस्कृतिक और वैचारिक जो बदलाव है यह हमें चाहिए.
And that needs to be on a very large scale.
और यह बहुत बड़े पैमाने पे चाहिए.
So Baba Saheb said, how can we bring this about?
और बाबा साहब ने फिर कहा कैसा हम यह ला सकते हैं.
Well, the first thing he said was, we can only do it by getting out of the system of ideas that supports caste.
उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम यह कर सकते हैं कि यह जो जाति व्यवस्था निर्माण करती है इस व्यवस्था से हम बाहर आ जाएं.
To begin with, he thought that it was possible to reform Hinduism.
पहले उन्होंने सोचा कि क्या यह जो हिंदू धर्म है इसका पुनर्निर्माण या इसको बदलाव सुधार किया जा सकता है.
And many swamis and leading Hindu thinkers tried to persuade him, look, we've changed, we've reformed.
बहुत सारे साधु स्वामी वगैरह वगैरह जो थे वो बाबा साहब के सामने आते थे और बताते, देखिए मैं बदल गया हूँ.
But really, there was not a fundamental change.
लेकिन सही मायने में देखा जाए तो वहाँ वास्तविक परिवर्तन कुछ भी नहीं था.
Nagarjuna told me a story the other day.
नागार्जुन ने मुझे एक कहानी बताई.
He said that just before the conversion, Dr. Raju was it?
Yes, Munje.
Munje. From the Hindu Mahasabha came to see him.
उनके धर्मांतरण के कुछ ही दिन पहले जो मुंजे हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे उनको मिलने आए.
He said, look, there's no need to leave.
उन्होंने कहा देखिए इसको छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं.
We will sort everything out.
हम सब चीजों को ठीक कर देंगे.
We will end untouchability.
हम जो छुआछूत है उसको नष्ट कर देंगे.
We will bring liberty, equality, fraternity within Hinduism.
और हिंदू धर्म में समता, स्वतंत्रता और बंधुता हम प्रस्तापित कर देंगे.
Well, Baba Saheb had lived a long time by then.
तो बाबा साहब ने काफी जिंदगी अपनी गुजार चुके थे यहाँ पे.
He'd heard these things before.
इसके पहले भी उन्होंने कई बातें ऐसी सुनी थी.
So he knew exactly what to say.
तो उनको पता था कि अभी मुझे इनको क्या बोलना
है. He said, well, that's very, very good to hear.
और बाबा साहब ने कहा वाह बहुत अच्छी बात है मैं आपसे यह सुन रहा हूँ.
So can the next Shankaracharya be me?
तो उन्होंने कहा कि क्या अगला शंकराचार्य कोई अछूत हो सकता है, मैं बन सकता हूँ.
Can I and my fellows perform the Vedic rituals?
जो वैदिक रूढ़ी या जो कर्मकांड जो है कर्मकांड है क्या कोई अछूत कर सकता है?
Can we teach the Vedas?
क्या हम वेदों को अभी पढ़ा सकते हैं?
Can we be heads of your mats?
जो आपके मठ है उनके जो मठाधिकारी है क्या अभी हम बन जाएंगे?
Well, of course, the doctor was silent.
निश्चित रूप से वो जो व्यक्ति थे वो शांत थे.
He couldn't answer.
क्योंकि वो कोई जवाब नहीं दे पाए.
There's some adjustment on the surface.
तो क्या है वो एक एडजस्टमेंट थी ऊपरी ऊपरी तरीके से.
The front of the shop is painted.
तो जो दुकान का जो बाहरी दरवाजा है उसका रंग बदल दिया.
But the goods inside are just the same.
लेकिन अंदर का जो सामान था वही रहा.
The dress is different, but the man inside is the same.
कपड़े बदल दिए लेकिन अंदर का जो इंसान है वह वैसा ही रहा.
Some of the words are different, but the actions are the same.
तो शब्द थोड़े बदल गए लेकिन उनकी जो कृति थी या जो कर्म था वैसे ही रहा.
So बाबा साहब said, we've just got to get out of this.
तो बाबा साहब ने कहा कि इन सब से हमें बाहर निकलना है, मुक्त होना है.
We just cannot stay here.
बिल्कुल यहाँ अभी रुका नहीं जा सकता.
There's nothing for us here.
हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है.
There's nothing not only just not just for us. There's nothing for India here.
या हमारे लिए नहीं लेकिन समूचे भारत के लिए यहाँ कुछ नहीं है.
Yes, some people sit on top of the heap.
निश्चित रूप से कुछ लोग ऊपर बैठेंगे.
And they get fat on eating.
और जो मोटे होते रहेंगे खा खा कर.
But they too are ruined by this system.
लेकिन वे लोग भी नष्ट हो रहे हैं इसी व्यवस्था से.
Because well, I often say it's a bit like a jailer and a prisoner.
मैं ऐसा कहूंगा कि जैसा जेल और जो जेलर होता है उसके जैसा.
You know, there's somebody in the prison and there's somebody outside the prison.
कोई जेल में होता है कोई जेल के बाहर होता है.
Who's in prison?
जेल में कौन है?
But there's no doubt the prisoner suffers more than the jailer.
निश्चित रूप से जेलर से ज्यादा जो जेल में है उसको तकलीफ होती है.
But the jailer is always worried that the prisoner will escape.
लेकिन जो जेलर होता है उसको हमेशा यह चिंता होती है कि जो जेल में है वो भाग जाएगा.
So the jailer too is in prison.
तो जेलर को भी वहां जेल में रहना पड़ता है.
Well, look at the British.
अब अंग्रेजों को देखिए.
They dominated India.
उन्होंने भारत का उत्पीड़न किया.
But all the time they were worried that Indians would kick them out.
और उनको हमेशा यह डर था कि एक दिन भारतीय उनको भगा देंगे.
So all the time they had to be looking around, what are Indians going to do?
तो वो हमेशा वो इस चिंता में रहते थे कि अभी ये भारतीय क्या करेंगे.
So even those at the top of the system, they suffer the insecurity of the system.
तो इस तरीके से जो उच्च वर्गीय भी जो होते जो ऊंचे भी होते उनको भी यह चिंताएं होती कि नीचे से क्या हो रहा है.
You're always worried you're going to be polluted by somebody.
तो आपको हमेशा डर होता है कि यह छूलेगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा.
You don't know what food you're eating.
आपको पता नहीं कि आप किस तरीके का खाना आप खाते हैं.
So yes, there's no doubt those at the bottom of the system, so called, suffer more than those at the top.
निश्चित रूप से जो निचले तबके में जो लोग होते हैं वह सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं.
But everybody suffers.
लेकिन सभी लोग वहां पीड़ित हैं.
Everybody loses their energy through the system.
इस व्यवस्था से सभी की जो शक्ति है वह नष्ट हो रही है.
So Baba Sahib said, we just got to get out of it for ourselves and for India.
और उन्होंने कहा कि इसके लिए इस व्यवस्था से बाहर निकलना बहुत जरूरी है हमारे लिए और भारत के लिए.
There's nothing here for us.
यहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं है.
So, but the question is, what to do, where to go?
लेकिन प्रश्न यह था क्या किया जाए कहाँ जाया जाए.
Baba Sahib knew that well, a human being doesn't live just for eating and dying.
बाबा साहब इस बात को भली भांति जानते हैं कि इंसान केवल खाने के लिए और खाकर मरने के लिए नहीं जीते.
As human beings, we've got something more to us than that.
एक इंसान होने के नाते हमारे पास कुछ तो भी और एक चीज है.
We can do so much more. We've got so much inside us.
हमारे पास ऐसी बहुत दृष्टि है बहुत सारी चीजें हमारे अंदर है जिससे हम कुछ कर सकते हैं.
And we need a light to live by.
और हमें एक प्रकाश चाहिए जीने के लिए.
So Baba Sahib said, we need a different set of ideas.
बाबा साहब को लगा कि हमें अलग कल्पनाओं की धारा चाहिए अलग विचार चाहिए.
We need to get these ideas right out of our minds.
यह जो पुरानी विचारधारा है इसको हमें छोड़ देना है.
But we need right thinking, proper thinking.
लेकिन हमें क्या है कि सही विचार चाहिए, सही विचारधारा चाहिए।
We need a thinking that will really bring us liberty, equality and fraternity.
ऐसे विचार चाहिए जो हमें सही मायने में समता, स्वतंत्रता और बंधुता लाएंगे।
We need a way of thinking that will allow us to develop as human beings.
ऐसे विचार चाहिए जो हमें इंसान के रूप में हमें जीना सिखाए।
He said that's the purpose of human society.
उन्होंने कहा यही मानव समाज का उद्देश्य है।
The purpose of human society is for us to cultivate ourselves to the highest degree possible.
तो एक इंसान होने का भी मतलब है कि हम अपने आप को उच्च स्तर पर विकसित कर ले जितना संभव है।
So Baba Sahib looked at world religion.
तो बाबा साहब ने दुनिया के सभी धर्मों को देखा।
And we know what a highly intelligent and careful man he was, and what a learned man he was.
अब आप जानते हैं कि बाबा साहब कितने उच्च शिक्षित और प्रकाढ़ पंडित थे, विद्वान थे।
So he read so much.
तो बहुत सारी चीजों को उन्होंने पढ़ा।
He studied so many religions.
सभी धर्मों को उन्होंने पढ़ा।
And he had conversations with people from different religions.
और अन्य धर्मों के जो मुख्य लोग थे उनके साथ उनकी चर्चाएं हुई।
But he found in the end that there was only one religion that met his criterion. Met his needs.
केवल एक ही ऐसा धर्म उनको मिला जो उनकी जो परीक्षाएं थी उसको वह सामना कर सकता था, उनका समाधान कर सकता
था। We want a religion that's reasonable.
उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा धर्म चाहिए जो कारण मीमांसा के ऊपर आधारित हो।
We don't want a religion that asks us to believe in things that are not in accordance with evidence and observation and reason.
उन्होंने कहा कि ऐसा मुझे धर्म नहीं चाहिए जो हमें यह मानने के लिए मजबूर करे जिसके कुछ कारण न हो, जिसके कुछ प्रमाण न हो और जिसका कोई अनुभव न हो।
I hope nobody will be offended if I say it, but you know, if you pray by the side of the river, it won't make your husband strong and live a long life.
मुझे लगता है आप लोगों को इस बात से बुरा नहीं रहेगा, लेकिन नदी के बाजू में खड़े होकर ऐसी कोई प्रार्थना करके हमारे पति का जीवन बड़ा नहीं होता।
There's no evidence for it. That's not the way to make your husband strong and live long.
अब यह कोई तरीका नहीं है आपके अपने पति को अच्छा जीवन देने का और उसको मजबूत बनाने।
You know, going and praying won't bring you a good husband or a good wife.
और वहाँ जाके हम ऐसी प्रार्थना करें कि मुझे अच्छी बीवी मिले या अच्छा मुझे पति मिले।
Temple won't bring you a son.
किसी भी एक विशेष मंदिर में जाके आपको बच्चा नहीं मिलता।
Making offerings won't pass your exam.
और आप कोई भी ऐसा चढ़ावा चढ़ाइए उससे परीक्षा में पास नहीं किया जा सकता।
This is all obvious. We've no evidence for it.
अब यह सारी चीजें एकदम स्वाभाविक है, हम उन सब चीजों को अच्छी तरह जानते हैं।
So, yes, Baba Sahib said we need a religion that offers us evidence.
तो बाबा साहब ने बोला कि ऐसा धर्म चाहिए जिसके कुछ प्रमाण।
We need a religion that is in accordance with reason.
ऐसा धर्म चाहिए जिसके कुछ यानी कारण मीमांसा।
We're not just required to believe with blind faith.
हम केवल अंधविश्वास के साथ किसी भी चीज को मान नहीं सकते।
Then we need a religion that teaches and brings liberty, equality and fraternity.
और ऐसा धर्म चाहिए जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता प्रस्तापित करने में सक्षम हो।
And as far as he was concerned, the only religion that fulfilled these criteria was the Buddha Dhamma.
और जहाँ तक हम सब जानते हैं कि उनके इन सभी जरूरतों को पूरा करने वाला केवल एक धर्म था, वो था बौद्ध धर्म।
In addition, the Buddha Dhamma is the religion of India at its greatest.
और जहाँ तक हम जानते हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ अगर कोई धर्म रहा तो बौद्ध धर्म रहा है।
Birendra knows that if you just dig anywhere in India, you'll find Buddhist remains.
Birendra ji को बहुत अच्छी तरह पता है, कहीं पे भी खुदाई कीजिए आपको बुद्ध मिलेंगे।
Anywhere, you just dig anywhere, you'll find Buddhist remains.
कहीं पे भी आप खोदिए आपको बौद्ध अवशेष मिलेंगे।
I heard once that underneath the Ayodhya Masjid there was a Hindu temple.
मैंने यह सुना कि जो अयोध्या की जो मस्जिद है वहाँ एक हिंदू मंदिर था।
Underneath the Hindu temple was a Buddhist stupa.
उस हिंदू मंदिर के नीचे बौद्ध स्तूप।
We don't get into those sort of quarrels.
इस तरीके से झगड़ों में हमें पड़ना नहीं है।
I don't know whether it's true or not, but this is what I've been told.
यह सच है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन यह मुझे बताया गया।
And it's quite likely because it was an important Buddhist center.
क्योंकि यह हो भी सकता है कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र था।
The greatest period of Indian history.
सच है ये।
एकदम सच है। So yeah, the greatest period of Indian culture was the Buddhist period.
तो सबसे महान सांस्कृतिक समय जो भारत के इतिहास में था वह बौद्ध संस्कृति.
I'll just give you a little taste of that.
इसका थोड़ा सा स्वाद मैं आपको दूंगा.
You know, Emperor Ashoka set out his edicts.
आपको पता है कि सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख लिखे.
There are many wonderful features of those edicts.
अब यह जो शिलालेख है उनके बहुत ही सुंदर सुंदर गुण है.
But there's one thing, there's one small thing that I think illustrates the mood of those edicts very well.
लेकिन एक ही बात मैं बताऊंगा जिससे पूरी यानी जो अपनी मानसिकता है वह शिलालेख के बारे में बताती है.
सम्राट अशोक established hospitals for animals.
सम्राट अशोक ने अस्पताल बनाए थे जानवरों के लिए पशु के लिए.
In modern India, there are not even hospitals for people enough.
अब आधुनिक भारत में हम देखते हैं कि इंसानों के लिए पर्याप्त अस्पताल नहीं है.
But at Ashoka's time, there were hospitals even for animals.
अब अशोक के जमाने में पशुओं के लिए भी अस्पताल थे.
So what a wonderful period that was.
तो कितना अप्रतिम वह काल रहा होगा.
We're really humane.
सही मायने में एक इंसानियत का युग.
Where people really had the inspiration to act as brothers and sisters.
सही मायने में ऐसी कोई जबरदस्त प्रेरणा तब रही होगी जो सब इंसान एक दूसरे के साथ भाई भाईचारा रखते होंगे.
So Baba Sahib saw in the Buddha Dhamma a chance to return to India's greatness.
तो बाबा साहब ने यह मौका देखा कि भारत की महानता में फिर से वापस जाने का.
There's one more factor about Buddhism.
और एक बात मैं बौद्ध धर्म के बारे में बताऊं.
Baba Sahib says this not in some places. Yeah.
Not in some places.
No, don't worry. So we've seen that caste is in the mind.
हमने देखा कि जाति जो है मन में.
All the injustice in the world is in the mind.
दुनिया के सभी जो यानी अन्याय है वह सब मन में है.
So if there is to be liberty, equality, and fraternity, there needs to be a change in the mind.
अगर हमें समता स्वतंत्रता और बंधुता चाहिए तो मन में परिवर्तन होना चाहिए.
So you need a religion that will help to bring about that change in the mind.
तो ऐसा एक धर्म चाहिए जिससे ऐसी मानसिकता तैयार हो अपना मन बदले.
And the essence of the Buddha Dhamma is the purification of the mind.
और बौद्ध धर्म का सार क्या है तो मन की पवित्रता.
Not the purification of the body by bathing in the Ganga.
तो केवल यानी गंगा में डुबकी मार के शरीर की पवित्रता ही नहीं.
I read the other day that the Ganga is one of the most polluted rivers in the world.
मैंने कहीं कभी पढ़ा है कि गंगा भी सबसे दूषित नदी हो रही है दुनिया की.
It's got so much filth in it.
क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें पड़ रही है.
But people bathe in it to gain purity.
लेकिन लोग वहां जाते हैं पवित्र होने के लिए.
But you don't gain purity by bathing in filth.
तो इस तरीके से पानी में डुबकी मार के हम पवित्र नहीं होते.
Purity is in the mind, not by ritual.
तो किसी कर्म कांड में पवित्रता नहीं होती है, पवित्रता मन में होती है.
So the Buddha Dhamma is about changing the mind.
तो बौद्ध धर्म मन को बदलने के बारे में बताता है.
And it gives us tools, it gives us means to change the mind.
और यह संसाधन देता है मन को बदलने के.
We did meditation this morning.
अब आज सुबह हमने ध्यान किया.
Well, that's a little change in the mind, even from what you did this morning.
अब निश्चित रूप से थोड़ा सा तो मन में परिवर्तन होगा भले ही थोड़ा सा ही हमने ध्यान किया.
You still your mind to some extent.
कम से कम आप अपने मन को स्थिर कर पाते हैं.
So then you can deal with the feelings that come up, the reactions that come up in your mind.
तो ये जो प्रतिक्रियाएं अपने मन में जो उत्पन्न होती है उसके साथ फिर हम सामना कर सकते हैं.
If you've been meditating, if you've been doing the mindfulness of breathing, you can't participate in a riot.
तो अगर आप ऐसा सांस के ऊपर ध्यान करना अगर आप कर रहे हैं तो आप किसी हिंसा में भाग नहीं लेते.
You can't harm other people easily.
आप किसी को भी आसानी से हिंसा नहीं पहुंचाएंगे.
So you more easily able to act with liberty, equality, fraternity.
बहुत आसानी से आप समता स्वतंत्रता और बंधुता के साथ अपना संबंध प्रस्थापित करेंगे.
So Baba Sahib chose the Buddha Dhamma because it gives us the tools to change the mind.
बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म दिखाया ताकि यह हमारे मन को बदलने के संसाधन देता है.
And those tools are ones that we can experience.
और यह ऐसे संसाधन है जिनका हम अनुभव कर सकते हैं.
We don't need to take them on faith.
उसको केवल हमें यानी श्रद्धा अंधश्रद्धा से लेना नहीं है.
We don't just say, oh, भगवान प्लीज चेंज my mind.
हम भगवान को ऐसा नहीं कहते कि भगवान मेरा मन बदल दो.
It won't happen.
इससे नहीं होगा.
But if we sit down and we meditate, we practice cleaning our minds, they will change.
लेकिन अगर हम बैठते हैं अपने मन के ऊपर कार्य करते हैं उसको साफ करते हैं ये होगा.
So Baba Sahib finally concluded that the Buddha Dhamma was the religion for the future of India.
तो बाबा साहब ने यह देखा कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो भारत का भविष्य बना सकता है.
And he converted, as we know, in 1956 with lakhs of his followers.
और हमको अच्छी तरह ज्ञात है कि 1956 में बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों के साथ इस धर्म की दीक्षा ली.
And many more followed in the next weeks.
और बहुत सारे ऐसे धर्मांतरण हुए आने वाले यानी उनके सप्ताह के तुरंत बाद.
But then very, very sadly, Baba Sahib himself died.
लेकिन बहुत दुखद घटना है कि बाबा साहब का तुरंत देहांत.
So that movement did not travel all the way over India.
तो यह जो आंदोलन है पूरी तरह भारत में फैल नहीं पाया.
So now that task rests with us.
तो अब यह जो महान कार्य है यह हमारे हाथ में है.
It's come to you here in Kushinara.
यह आपके हाथ में यहाँ कुशीनारा में आपके हाथ में.
One of the most important places in Buddhism.
बौद्ध यानी बुद्धिज्म में सबसे महत्वपूर्ण स्थान.
Because of Baba Sahib, you found your way to the Buddha Dhamma.
क्योंकि बाबा साहब के वजह से आपको बुद्ध का रास्ता मिला.
So now we must work together to change the minds of other people in India.
तो अभी हम सब लोगों ने मिलकर यह कार्य करना है कि भारत के मन